ओम शांति। सभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज हम इमोशनल इंजीनियरिंग की बात करने वाले हैं, और जब हम इमोशनल इंजीनियरिंग का ख्याल हमारे मन में आता है तो दो शब्द ध्यान में आते हैं, एक तो है इमोशंस और एक है इंजीनियरिंग। इमोशंस यानी कि भावनाएं। तो इमोशंस एक ऐसा अनुभव है जो हम 24/7 हर क्षण एक्सपीरियंस करते हैं। और जब हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग मतलब किसी भी चीज का निर्माण करना। तो इमोशंस का निर्माण तो हम पहले ही कर चुके हैं, हम निर्माण भी कर चुके हैं और उसको डेली बेसिस पर हर क्षण अनुभव भी करते हैं। तो सही मायनों में देखा जाए तो हम इमोशनल इंजीनियरिंग नहीं बल्कि इमोशनल री इंजीनियरिंग की बात करेंगे, क्योंकि इमोशंस का निर्माण तो हो चुका है लेकिन अब हमें इमोशंस का पुनः निर्माण करने की जरूरत है। अपनी भावनाओं को सही मायना देने की जरूरत है, अपनी भावनाओं में वो बदलाव देने की जरूरत है जिससे हम अच्छा अनुभव कर सकें। तो आज का जो ये सेशन है इमोशनल री इंजीनियरिंग के बारे में, हम उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज जो हमें जाननी है वो है अपनी भावनाओं को समझना, यानी कि अंडरस्टैंडिंग अवर इमोशंस। और उसके बाद आएगा कि उसमें हमें रिक्वायर्ड क्या इंटरवेंशन करने की जरूरत है। सो लेट्स एक्सप्लोर टू अंडरस्टैंड अवर इमोशंस एंड लेट्स एक्सप्लोर हाउ व्हाट इज द राइट इंटरवेंशन वी नीड टू डू। तो सबसे पहले हमें इमोशंस को पहचानना चाहिए। अगर हमें इमोशंस को डिफाइन ही करना पड़े तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इमोशंस मतलब एनर्जी इन मोशन, या फिर एक तरीके से और इमोशन को कहा जा सकता है, इमोशन एक टेम्पररी रिएक्शन है या फिर एक टेम्पररी रिस्पॉन्स है कोई भी सर्कमस्टांसेस जो हमारे पास आती है उसके रिस्पॉन्स में हम कैसे एक्ट करते हैं, कैसे अनुभव करते हैं, उनको हम इमोशंस कहते हैं। इमोशंस यानी कि भावनाएं एक एक्सपीरियंस है, और वो भावनाएं जब और लंबे समय तक होती है उसके बाद हमारी स्टेट ऑफ माइंड बनती है, और वो स्टेट ऑफ माइंड बाद में जाकर हमारे एक्शन का रूप लेती है। तो इमोशंस हमारे एक्सपीरियंस लेवल पर एक रिएक्शन है, एक रिस्पॉन्स है किसी भी सर्कमस्टांसेस के प्रति। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिफ्लेक्शन हम करते हैं। आप सभी स्ट्रेट बैठ जाइए, अपने बॉडी को एकदम रिलैक्स कर दीजिए। हो सके तो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। एक सेल्फ रिफ्लेक्शन हम अभी करेंगे। आज आपका जो दिन बीता सुबह से लेकर अब तक, ये 11:30 का वक्त है, संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, आप जब सुबह सोकर उठे और अब तक आपके मन की स्थिति कैसी थी? अपने मन को देखते जाइए। सुबह जब मैंने आंखें खोली, अपने दिन की शुरुआत करी, तो मैंने कैसा अनुभव किया? मेरी स्टेट ऑफ माइंड कैसी थी? फिर मैंने नाश्ता किया होगा, अपने परिवार वालों से मिली होगी, और उसके बाद मुझे इन्फॉर्मेशन भी थी कि आज का ये प्रोग्राम आने वाला है, तो मेरे मन में वो विचार भी आ रहे थे कि मुझे इसे अटेंड करना है। अब थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। आपका जो पिछले दिन का वक्त बीता उसको असेस कीजिए। कल का जो दिन बीता सुबह से लेकर रात तक, मेरा दिन कैसा था? मेरे मन की अवस्था कैसी थी? मैं कैसा अनुभव कर रही थी? अब ओवरऑल पिछले कुछ दिनों से अगर मैं अपने आप को असेस करूं, अपनी इमोशनल हेल्थ को असेस करूं, तो मैं अपने आप को 1 to 10 क्या स्केल दूंगी? 1 मींस आई एम इमोशनली अनहेल्दी एंड 10 मींस आई एम इमोशनली वेरी हेल्दी। अपने ही आपको एक असेसमेंट दीजिए। ये असेसमेंट आपसे कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन ये एक अवेयरनेस है हमारी खुद के लिए। अब एक लास्ट प्रश्न अपने आप से पूछिए कि क्या मैं इमोशनली हेल्दी होना चाहती हूँ, क्या मैं इमोशनल वेलबींग की तरफ जाना चाहती हूँ, और अगर मेरा जवाब हाँ है तो इसके लिए आज मैं क्या करने के लिए रेडी हूँ, कौन सा एक नया बदलाव मैं अपने जीवन में लाने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच। और आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो बताइए दोस्तों, आपने सेल्फ रिफ्लेक्शन तो किया ही होगा, अपने आप को आपने कोई ना कोई असेसमेंट तो दिया होगा। हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपका असेसमेंट क्या था, आप चाहे तो हमसे शेयर कर सकते हैं, बट ये हमारी अवेयरनेस के लिए था। क्योंकि जब हम इस तरह से रिफ्लेक्शन करते हैं तो हमें मालूम चलता है कि मेरी इमोशनल हेल्थ कैसी है। और अब जो एक लास्ट प्रश्न आपने अपने आप से पूछा था कि इमोशनल वेलबींग के लिए मैं क्या बदलाव अपने जीवन में लाना चाहती हूँ, तो आज का जो ये सेशन होगा, हम ऐसे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स को एक्सप्लोर करेंगे जो हम अपने लाइफस्टाइल में ला सकते हैं, जिससे हम इमोशनल री इंजीनियरिंग कर सकें। इमोशंस को जानने से पहले सबसे पहली चीज जो हमें एक्सपीरियंस करनी है कि इमोशंस का निर्माण कैसे होता है। लेकिन इमोशंस के थोड़ा सा अगर पहले जाएं तो आती हैं फीलिंग्स, और फीलिंग्स के भी थोड़ा सा पहले जाएं तो आते हैं विचार। तो हमारे मन में विचारों का क्रिएशन होता है, वो विचार आगे चल के फीलिंग्स बनते हैं, ये फीलिंग्स आगे चल के इमोशंस का निर्माण करती है। और एक स्पेसिफिक इमोशन अगर लंबे समय तक हमारे मन में रहे तो वो हमारी स्टेट ऑफ माइंड बन जाती है, और ये स्टेट ऑफ माइंड आगे चल के हमारे एटीट्यूड का निर्माण करती है, हमारी पर्सपेक्टिव का निर्माण करती है, हमारा एक जीवन को देखने का नजरिया देती है। और ये एटीट्यूड एंड पर्सपेक्टिव आगे चल के फिर हमारे एक्शंस को क्रिएट करते हैं, और हमारे लंबे समय के एक्शंस हमारी हैबिट बनाते हैं, और मेरी हैबिट मेरी इनर पर्सनैलिटी को क्रिएट करती है, एंड माई इनर पर्सनैलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ माई बिहेवियर, और जिसको हम कहते हैं आउटर पर्सनैलिटी। और जैसी मेरी आउटर पर्सनैलिटी होगी ऐसे मेरे मन पर इम्प्रेशंस बनते हैं, और जैसी मेरे इम्प्रेशंस होंगे ऐसे जाके मेरी डेस्टिनी बन जाती है। तो देखा दोस्तों कितना लंबा सफर है विचारों से लेकर हमारी डेस्टिनी तक का। अगर हम थॉट्स की बात करें तो थॉट्स भी एक एनर्जी की तरह ही है, लेकिन इमोशंस की बात हम आज अच्छे से करेंगे। आज हम इमोशंस को एक्सप्लोर करेंगे। तो इमोशनल री इंजीनियरिंग करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है कि मैं अच्छा अनुभव कर सकूं, उस पहले स्टेप के बारे में जानते हैं। लेकिन थोड़ा सा और गहराई में जान लेते हैं कि हम बात तो कर रहे हैं थर्ड स्टेप की, यानी कि इमोशंस की, लेकिन मेरी अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेरी फीलिंग्स कैसी हैं और मेरे थॉट्स कैसे हैं। हम इमोशन के लेवल पे थर्ड स्टेप को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत हुई है थॉट्स से। तो कब मेरे मन में थॉट्स क्रिएट हुए, कब वो फीलिंग्स में कन्वर्ट हो गए, और कब उन्होंने इमोशंस का रूप धारण किया, ये जो एक सफर है ये शब्दों में तो बहुत लंबा लगता है, लेकिन इसका टाइम फ्रेम बहुत कम है। ये पूरा प्रोसीजर कम से कम लेस देन अ सेकेंड में हो जाता है। इट टेक्स ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड टू कन्वर्ट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ थॉट इंटू एन इमोशन एंड देन इंटू अ स्टेट ऑफ माइंड। और जैसे कि हमने जाना कि इमोशंस तो हैं एक सर्कमस्टांसेस का रिस्पॉन्स, तो अगर हम चाहते हैं कि हम रिएक्ट ना करें और हम रिस्पॉन्ड करें, अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छे पॉजिटिव इमोशन को एक्सपीरियंस करें और नेगेटिव इमोशन को अवॉइड करें, सो द फर्स्ट प्रैक्टिकल टिप ऑफ द डे इज टू हैव अ पॉज, इज टू हैव अ पॉज इन द रिस्पॉन्स। जैसे ही थॉट्स क्रिएट होती हैं और फीलिंग्स कन्वर्ट हो गई और वो इमोशन जनरेट होता है, रिस्पॉन्ड करने से पहले बाद में जाके वो एक्शन का रूप धारण करता है, तो थॉट्स के लेवल पे, फीलिंग्स के लेवल पे, इमोशन के लेवल पे मुझे पॉज देने की जरूरत है। एंड द बेस्ट पॉज विच आई कैन डू इज एट द लेवल ऑफ थॉट्स। थॉट्स के लेवल पे हम पॉज कैसे दे सकते हैं उसको हम आने वाले कुछ मिनट्स में एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने बात की थी थॉट्स लीड्स टू फीलिंग्स एंड फीलिंग्स लीड्स टू इमोशंस, तो हमारे मन में विचार तो कई प्रकार के आते हैं और हम अलग अलग तरह की फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करते हैं। इसी तरह से हमारे इमोशंस भी पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया है कि कभी कभी तो आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं और कभी कभी हम अच्छा महसूस नहीं करते। हम अपने इमोशंस को बहुत सारे नाम भी दे सकते हैं। नेगेटिव इमोशंस को अगर आप नाम देना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? कभी कभी हम बहुत सैड एक्सपीरियंस करते हैं, कभी कभी हम हर्ट की फीलिंग को एक्सपीरियंस करते हैं, कभी कभी हम रिजेक्टेड फील करते हैं, कभी कभी हम गिल्ट में जाते हैं। तो ये हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं। और पॉजिटिव इमोशंस को क्या कहेंगे? कभी कभी हम बहुत कंटेंटेड फील करते हैं, यानी कि बहुत सैटिस्फाइड फील करते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत कंपैशनेट फील कर रहे हैं। कभी कभी हम बहुत हैप्पी फील करते हैं। तो ये है हमारे पॉजिटिव इमोशंस। लेकिन एक कहावत है, आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि हमें ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए, राइट? आपने अपनी ड्यूटीज में, अपना जो आपका ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, ब्यूटीफुल प्रोफेशन है, हेल्थ केयर प्रोफेशन, इसमें भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अक्सर अपने प्रोफेशन में कौन से लोगों से मिलते हैं जो मोस्टली दुख में है और दर्द में है। उस टाइम पर हम कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तो इस चीज को समझने की हम कोशिश करते हैं कि हमें इमोशनल होने के बजाय इसमें एक थोड़ा सा शिफ्ट करने की जरूरत है। इसके लिए एक छोटा सा एक्सपीरियंस मुझे याद आता है जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। जब मैंने 2015 में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया था, तो ज्वाइन करने के कुछ दिनों बाद ही, मे बी अराउंड 4 to 5 days लेटर, मैं अपने घर जा रही थी और एक रेड लाइट पर मेरी कार के पास एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति आकर खड़े हुए और वो रोकर मुझे रिक्वेस्ट करने लगे रोते हुए कि आप मेरी मैगजीन्स खरीद लीजिए, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, उसको बहुत दवाई की जरूरत है, मुझे पैसों की जरूरत है। तो उनकी बात को सुनकर, कायदे से आप समझेंगे कि ऐसा होता ही है, मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई। लेकिन जो मैंने एक्शन किया वो एक्शन ये था कि मैंने उनकी सारी मैगजीन्स खरीद ली। हालांकि मुझे उन मैगजीन्स को खरीदने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने उन मैगजीन्स को खरीद लिया और फिर रेड लाइट खत्म हुई और मैं आगे चल पड़ी। लेकिन मैंने अपने अंदर क्या महसूस किया? महसूसता अलग थी, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो बॉडी में भी दिखाई दिया कि मेरी आंखों में भी आंसू थे। अब आप इस चीज को क्या कहेंगे दोस्तों? दैट आई वॉज बींग इमोशनल। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था कि बुरा एक्सपीरियंस था, इसको आप कैसे असेस करेंगे? अगर मैं एक्शन लेवल पे देखूं तो वो एक अच्छा एक्शन था। मैंने उनकी हेल्प की, मेरा तो उसमें कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसमें एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग थी। लेकिन जो मैंने अपनी एनर्जी लेवल को डाउन होते हुए देखा, दैट वॉज बींग इमोशनल। तो कभी कभी जब हम इमोशनल होते हैं तो हम अपने एनर्जी को घटा देते हैं, अपने पॉजिटिव इमोशन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। सो द सेकेंड टेक होम मैसेज इज, इंस्टेड ऑफ बींग इमोशनल, आई शुड बी बींग कंपैशनेट। मुझे कंपैशनेट होने की जरूरत है। अब ये जो एक्सपीरियंस मेरे साथ बीता, इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। अगर आपके साथ आज ही हो तो आप क्या करेंगे? या मेरे साथ दोबारा हो, इसको मुझे रिलिव करने का मौका मिले, तो मैं इसमें क्या चेंज लाना चाहूंगी? And the change is that instead of being emotional, I will be compassionate for that old person. उसे मेरे action में कोई change नहीं आएगा। शायद फिर से हम magazine खरीद सकते हैं, लेकिन जो मेरे मन में transiently दुख की feeling आई, sadness की feeling आई, वो feeling जब हम compassionate होते हैं उस feeling को experience नहीं करते। किसी के लिए kind feel करना, किसी के लिए compassionate feel करने का मतलब है कि मैं अपना एनर्जी लेवल, जो मेरा हाई एनर्जी लेवल है, मैं उसको वहीं पर स्टेबल रख पा रही हूं। मैं अपने हाई एनर्जी लेवल को, अपने पॉजिटिव इमोशन को उस वक्त प्रोटेक्ट कर पा रही हूं। दैट इज बीइंग कंपैशनेट। बीइंग कंपैशनेट को बहुत सारी चीजों से समझा जाता है कि हम सामने वाले व्यक्ति की स्टेट को समझ सकते हैं, लेकिन समझते हुए, उसकी हेल्प करते हुए, मैं अपना एनर्जी लेवल डिक्रीज नहीं कर रही, जिसको कहते हैं बीइंग कंपैशनेट. सो द नेक्स्ट टेक होम मैसेज इज आई शुड बी कंपैशनेट. अब कंपैशनेट होने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है, दो शब्द उसके बारे में. कंपैशनेट होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल मुझे एक्वायर करना है अपने लाइफस्टाइल में, वो है कंपैशनेट लिसनिंग. आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा, कंपैशनेट लिसनिंग एक इतना अच्छा आर्ट है जो एक हर हेल्थ केयर प्रोफेशनल को होना चाहिए. कंपैशनेट लिसनिंग का मतलब है, लिसन तो आप सब भी करते हैं, सबकी बातों को सुनते हैं. कुछ लोगों में लिसनिंग कैपेसिटी कम होती है, लेकिन किसी में बहुत अच्छी होती है. लेकिन कंपैशनेट लिसनिंग तो उसके भी ऊपर है. कंपैशनेट लिसनिंग मीन्स लिसनिंग फ्रॉम द हार्ट, लिसनिंग विथ फुल अटेंशन. आई एम लिसनिंग टू यू एज इफ आई एम ऑफरिंग माइसेल्फ कंप्लीटली टू यू. दैट इज कंपैशनेट लिसनिंग. तो हमें कंपैशनेट लिसनिंग को अपने लाइफस्टाइल में लाने की जरूरत है. अब एक और चीज जिसको कहते हैं, जब हम इमोशंस की बात करते हैं, कि इमोशनल होना मतलब कि सिर्फ अपने ब्रेन के एक स्पेसिफिक एरिया को यूज करना. एक हमारा ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम होता है, एक हमारा ब्रेन का रैशनल थिंकिंग होता है. लेकिन इमोशनल री इंजीनियरिंग मीन्स आई एम कीपिंग अ बैलेंस ऑफ बोथ द टू. मैं अपने लिम्बिक सिस्टम और अपने रैशनल थिंकिंग को बैलेंस कर पा रही हूं. दैट इज बीइंग कंपैशनेट एंड दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ इमोशनल री इंजीनियरिंग. इमोशनल री इंजीनियरिंग को थोड़ा और गहराई में समझते हैं. जैसे कि हमने स्टार्टिंग में जाना कि थॉट्स लीड्स टू फीलिंग्स एंड फीलिंग्स लीड्स टू इमोशंस. अब एक तरफ तो आपने एक्सपीरियंस किया है कि हम पॉजिटिव इमोशन को भी एक्सपीरियंस करते हैं और नेगेटिव इमोशन को भी एक्सपीरियंस करते हैं. लेकिन ये जो इमोशंस की कैटेगरी है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो कहां से क्रिएट हुई? फीलिंग से. और मेरी फीलिंग्स कहां से क्रिएट हुई? मेरे थॉट्स से. तो हमारे मन में काफी प्रकार की थॉट्स क्रिएट होती हैं और जिसकी पूरी की पूरी कैपेसिटी मेरे ही पास है. आज तक तो हम समझते आए, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे मन में कौन से टाइप की थॉट्स क्रिएट होती हैं, तो सब यूनानिमसली एक ही आंसर देंगे कि पॉजिटिव थॉट भी क्रिएट होती हैं और नेगेटिव थॉट भी क्रिएट होती हैं. बट व्हेन आई केम इनटू ब्रह्मा कुमारीज, दैट वाज अ ब्यूटीफुल अवेयरनेस विच आई रिसीव्ड, इज दैट कि हमारे माइंड में और बहुत टाइप की थॉट्स क्रिएट होती हैं. और ये अवेयरनेस एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए, एक डॉक्टर के लिए, एक नर्स के लिए, या जो कोई भी हॉस्पिटल में काम करते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है. हमारे माइंड में 6 टाइप ऑफ थॉट्स क्रिएट होते हैं. दे आर पॉजिटिव थॉट्स, दे आर नेगेटिव थॉट्स एज यू नो, एंड द थर्ड कैटेगरी इज वेस्ट थॉट्स. फोर्थ कैटेगरी इज नेसेसरी यानी कि न्यूट्रल थॉट्स. और पांचवी कैटेगरी है टॉक्सिक थॉट्स. और लास्ट वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, वो है एम्पावरिंग यानी कि एलिवेटेड थॉट्स. तो अगर पॉजिटिव थॉट का एग्जाम्पल देखना चाहें तो आप बहुत अच्छे एग्जाम्पल दे सकते हैं. आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन, ये एक पॉजिटिव थॉट का एग्जाम्पल है. आई एम अ हेल्पिंग पर्सन. नेगेटिव थॉट्स तो जिसके डिटेल में हम नहीं जाते, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. लेकिन हम वेस्ट थॉट्स को समझने की कोशिश करेंगे. वेस्ट थॉट्स आर काइंड ऑफ बेसलेस थॉट्स यानी कि अननेसेसरी थॉट्स. इनको क्रिएट करने की मुझे जरूरत नहीं है, कोई सर्कमस्टांसेस नहीं है जो ट्रिगर कर रही है वेस्ट थॉट्स को. हम सिंपली अपनी ही वेस्टफुल थिंकिंग से, अपनी ही जो हमारी पर्सनालिटी बन चुकी है, उससे हम वेस्ट थॉट्स का क्रिएट करते हैं. ये एक साइकिल की तरह है. फोर्थ कैटेगरी है नेसेसरी थॉट्स यानी कि न्यूट्रल थॉट्स, जो हम पूरे रूटीन में अपने प्रोफेशन के लिए या अपने घर के काम के लिए जो थॉट्स क्रिएट करते हैं कि अभी हमें मार्केट से ये सामान लाना है, अब मुझे घर का ये काम खत्म करना है, या मुझे हॉस्पिटल का ये प्रोजेक्ट खत्म करना है, ये हमारे न्यूट्रल यानी कि नेसेसरी थॉट्स हैं. द सेकेंड लास्ट कैटेगरी इज टॉक्सिक थॉट्स. वेरी हाई इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव थॉट्स आर टॉक्सिक थॉट्स. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल एज आई सेड इज एम्पावरिंग और एलिवेटेड थॉट्स. जब हाई इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव थॉट्स हम क्रिएट करते हैं, उनको हम एलिवेटेड थॉट्स कहते हैं. पॉजिटिव थॉट्स हमारे माइंड की पावर को बढ़ाते हैं, नेगेटिव थॉट्स ऑब्वियसली हमारे माइंड की पावर को घटाएंगे, और टॉक्सिक थॉट्स तो हमारे माइंड की पावर को ड्रास्टिकली डिक्रीज करते हैं। लेकिन एम्पावरिंग थॉट्स या एलिवेटेड थॉट्स हमारे माइंड की पावर को इंक्रीज कर देते हैं। तो द नेक्स्ट टेक होम मैसेज, उसको समझने से पहले हम एक छोटा सा रिफ्लेक्शन और जरूर करते हैं, और ये रिफ्लेक्शन हमारे अंदर एक बहुत अच्छी अवेयरनेस लेकर आएगा। आप फिर से एक बार स्ट्रेट बैठ जाइए, आप अपनी आंखें खुली भी रख सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं, और पहली बार आज अपने मन को देखिए। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑफ माई ओन माइंड। अपने मन को देखें कि सुबह से लेकर अब तक मेरे मन में ये 6 टाइप्स ऑफ थॉट, जिसकी नॉलेज मुझे अभी हुई है, सबसे ज्यादा परसेंटेज में कौन सी थॉट्स मेरे मन में क्रिएट होती हैं। अपने कल के दिन को भी रिकॉल कर लीजिए कि ओवरऑल पिछले कुछ दिनों से अगर मैं अपने माइंड को असेस करूं, अपने मन को असेस करूं, तो मेरे मन में कौन सी थॉट प्रेडोमिनेट करती है, मेरा माइंड कौन सी थॉट से सबसे ज्यादा ऑक्यूपाइड रहता है, और जिस थॉट से मेरा माइंड ऑक्यूपाइड रहता है उसको नंबर वन देंगे। नेक्स्ट लेवल पे नंबर टू कौन सी थॉट को मैं दूंगी, और एक नंबर और दीजिए, नंबर थ्री। अब अपनी आंखों के सामने, अपनी मन की आंखों से ही ये फर्स्ट थ्री प्रेडोमिनेंट थॉट्स जो मेरे माइंड को ऑक्यूपाई करती हैं, इनको देखिए। और ये एक सेकंड अवेयरनेस है मेरे लिए, मेरी लाइफ में। आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, व्हाट डिड यू फाइंड? आपके मन में कौन सी थॉट सबसे ज्यादा प्रेडोमिनेंट थी? आप चैट बॉक्स में अपने आंसर्स लिख सकते हैं, लेकिन जब भी हम ये क्वेश्चन सबसे पूछते हैं तो सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं, सबका यूनैनिमसली एक ही आंसर होता है। सिर्फ 2-3 थॉट्स हैं, उसी में सबका आंसर रोटेट करता है। आपको पता है कौन सा आंसर हमें सबसे ज्यादा मिलता है? कि लोग ऐसा नॉर्मली कहते हैं कि मेरे माइंड में सबसे ज्यादा वेस्ट थॉट्स आते हैं, मेरे माइंड इज मोस्टली ऑक्यूपाइड बाय नेगेटिव थॉट्स या फिर न्यूट्रल थॉट्स। तो वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, नॉर्मली जो लोग कहते हैं कि हमारा माइंड इन्हीं तीन थॉट से प्रीऑक्यूपाइड रहता है। तो ये एक अवेयरनेस है मेरे लिए। ये है तो नहीं अच्छी अवेयरनेस, लेकिन इस अवेयरनेस के बाद मुझे ये आइडिया हो जाएगा कि मुझे क्या इंटरवेंशन करने की जरूरत है। और मुझे क्या इंटरवेंशन करने की जरूरत है? अगर मुझे पॉजिटिव इमोशन को एक्सपीरियंस करना है तो मुझे एम्पावरिंग थॉट्स को क्रिएट करना होगा, तो मुझे पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करना होगा। सो द नेक्स्ट टेक होम मैसेज इज क्रिएशन ऑफ पॉजिटिव एंड एम्पावरिंग थॉट्स। अब जब हम पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करना चाहते हैं, एम्पावरिंग थॉट्स को क्रिएट करना चाहते हैं, सो माय फ्रेंड्स, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द रॉ मटेरियल ऑफ द थॉट्स? ये थॉट्स हमारे माइंड में जो क्रिएट होती हैं, उसका बेस क्या है या फिर उसका सोर्स क्या है? एंड द सोर्स ऑफ क्रिएशन ऑफ दीज थॉट्स इज द इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन सारी हमारे आसपास है, दैट इज द मेन सोर्स। सो द नेक्स्ट टेक होम मैसेज इज आई हैव टू चूज द राइट इन्फॉर्मेशन। अगर राइट इन्फॉर्मेशन को मैं चूज करूंगी, राइट सोर्स को अपने माइंड में आने दूंगी, तो राइट टाइप ऑफ थॉट्स को मैं क्रिएट कर सकती हूं। सो आई नीड टू पुट अ फिल्टर इन माई माइंड कि मुझे कौन सी थॉट को अपने माइंड के अंदर आने देना है। आप इस चीज को आज की टेस्टिंग टाइम्स में रिलेट कर सकते हैं। सभी लोग कौन सी इन्फॉर्मेशन को देख रहे हैं? बहुत चारों तरफ फियर वाली इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन है जो इनसिक्योरिटी को क्रिएट करती है, फियर को क्रिएट करती है, अनसर्टेनिटी को क्रिएट करती है। अगर हम पूरे दिन में वही इन्फॉर्मेशन को वॉलंटरली बाय चॉइस अपने माइंड में आने देंगे तो फिर हमारे माइंड में नेगेटिव टॉक्सिक या वेस्ट थॉट्स ही क्रिएट होंगे। सो अगर हम बाहर ही उसमें फिल्टर लगा दें कि मैं सही इन्फॉर्मेशन को ही अपने माइंड में आने दे रही हूं, तो मेरे लिए पॉजिटिव और एम्पावरिंग थॉट्स को क्रिएट करना बहुत ईजी हो जाएगा। इस बात को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। जैसे आप लोग अपने बॉडी को हेल्दी बनाते हैं, राइट? हम डॉक्टर्स हमेशा अच्छी एडवाइस देते हैं कि हमारे बॉडी को क्या खाना चाहिए। हमें पता है इस बॉडी को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स देने की जरूरत है। तो अगर हम कभी अनहेल्दी फूड खा लें, अगर हम कोई हैवी फूड खा लें, तो उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, और कभी कभी तो बॉडी डाइजेस्ट कर पाता है और कभी कभी नहीं डाइजेस्ट कर पाता, और फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ मेडिसिन लेनी पड़ती है। लेकिन अगर लंबे समय तक हम एक अनहेल्दी फूड खाते रहेंगे तो फिर हमारे बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब हो जाएगा। तो जो हम इंटरवेंशन कर रहे थे मेडिसिन के रूप में, कुछ टाइम बाद वो मेडिसिन भी एक्ट नहीं कर पाएगी। इसी तरह से हम समझते हैं कि अगर हम एक हैवी इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में ले रहे हैं तो हमारा माइंड उस हैवी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज नहीं कर पाएगा। हमारा माइंड उस हैवी इन्फॉर्मेशन को ना ठीक से एनालाइज कर सकता है, ना एब्जॉर्ब कर सकता है, ना ही इंटेलेक्ट उस पर एक्ट कर सकता है, और वो हैवी इन्फॉर्मेशन टॉक्सिक और नेगेटिव थॉट्स को क्रिएट करती हैं, और ये नेगेटिव थॉट्स आगे जाके नेगेटिव फीलिंग्स में कन्वर्ट होती हैं। ये नेगेटिव फीलिंग्स नेगेटिव इमोशंस को जनरेट करते हैं, और लंबे समय का नेगेटिव इमोशन मेरी स्टेट ऑफ माइंड को बना देता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी इन्फॉर्मेशन में एक बड़ा अच्छा सा फिल्टर लगाना है, और ये किसके हाथ में है, ये मेरे ही हाथ में है। मैं खुद चूज कर सकती हूँ कि मुझे कौन सी इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में एंटर करने देना है, एंड दैट विल बी योर पर्सनलाइज प्लान। आप अपना पर्सनलाइज प्लान बना सकते हैं कि क्या तरीका है कि आप अपने इन्फॉर्मेशन का फिल्टर कैसे लगाएंगे। कहा जाता है कि टाइम इज द बेस्ट हीलर। जब भी कोई इमोशन आता है, चाहे वो पॉजिटिव इमोशन हो या फिर वो एक नेगेटिव इमोशन हो, टाइम के साथ उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती है। हमने काफी बार देखा है कि अगर हम किसी अपने नियर वन को लूज करते हैं तो उससे जो ग्रीफ वाला इमोशन जनरेट होता है, वो इमोशन टाइम के साथ धीरे धीरे कम हो जाता है। तो अब हमें चूज करना है, ये एक ब्यूटिफुल साइंस को हमें समझना है, कि अगर हम एम्पावरिंग थॉट्स को क्रिएट करेंगे जो कि हाई इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव थॉट्स है, जब हम इस पॉजिटिव थॉट को क्रिएट करेंगे तो कुछ टाइम तक इसका असर हमारे माइंड पर रहेगा, और जब तक एक हाई इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव थॉट का इंटेंसिटी फेड होने लगे, उससे पहले मैं एक और एम्पावरिंग थॉट्स को क्रिएट करूं। सो दिस ब्यूटिफुल जो आर्ट है, इसको मुझे एक्वायर करने की जरूरत है, कि मुझे वॉलंटरली चेन ऑफ एम्पावरिंग थॉट्स को क्रिएट करना है। अब इन थॉट्स को हम कैसे क्रिएट करते हैं, इसको हम आने वाले टाइम में एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन उसको एक्सप्लोर करने से पहले एक बहुत अच्छा सटल मैकेनिज्म मुझे समझना होगा। जैसे कि मैंने जाना कि मेरे माइंड में 6 टाइप्स ऑफ थॉट्स क्रिएट होते हैं, तो माइंड का काम तो है थॉट्स को क्रिएट करना, लेकिन जो मैं एक ब्यूटिफुल एनर्जी हूं और इस बॉडी को चला रही हूं, मैं एनर्जी कैसे काम करती हूं, दैट इज अ सटल ब्लेंड, सटल मैकेनिज्म बिटवीन द माइंड, द इंटेलेक्ट एंड द पर्सनैलिटी। तो माइंड का तो काम है थॉट्स को क्रिएट करना, और इंटेलेक्ट का रोल क्या है, इंटेलेक्ट का रोल है कि जो भी हम थॉट्स क्रिएट करते हैं उसको इंटेलेक्ट एनालाइज करता है, और माइंड को एडवाइज भी करता है, और थॉट्स को कैटेगराइज भी करता है। आपने हमेशा एक्सपीरियंस किया होगा, जब भी आप कुछ नेगेटिव सोचते हैं, आपको अंदर ही अंदर एक अवेयरनेस होती है कि अभी मैं अच्छा नहीं सोच रहा। जो आपकी ये डीप अवेयरनेस है, इसको इंटेलेक्ट कहते हैं, एंड दैट इज द वॉइस ऑफ इंटेलेक्ट, जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि अंतरात्मा की आवाज हमें आती है, दैट इज द वॉइस ऑफ इंटेलेक्ट। तो अगर हम अपने आप को अभी असेस करें, इंटेलेक्ट तो हमारा बहुत अच्छे से काम कर रहा है, हमेशा हम एडवाइस करते हैं अपने आप को अंदर ही अंदर कि हम कब नेगेटिव सोचते हैं और कब पॉजिटिव सोचते हैं। इंटेलेक्ट माइंड को एडवाइस भी करता है, जितना इंटेलेक्ट क्लियर होगा उतना हम अच्छी एडवाइस अपने माइंड को दे सकते हैं। तो हमें क्या इंटरवेंशन करने की जरूरत है इमोशनल री इंजीनियरिंग के लिए, कि एक तो मुझे माइंड के लेवल पर इंटरवेन करना है कि मुझे एम्पावरिंग थॉट्स को क्रिएट करना है, आई नीड टू क्रिएट द चेन ऑफ एम्पावरिंग थॉट्स। और एक इंटरवेंशन मुझे करना है इंटेलेक्ट के लेवल पर कि मुझे ज्यादा से ज्यादा अपने इंटेलेक्ट की वॉइस को सुनना है, इंटेलेक्ट की वॉइस को सुनने के लिए और अपने इंटेलेक्ट में क्लैरिटी लाने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है। उसके लिए तो स्टेबल माइंड होना चाहिए। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका जो मैंने ब्रह्म कुमारीज में आकर सीखा और जो दुनिया के सब लोग भी बताते हैं, इज टू हैव द प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस। जितना हम साइलेंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना हम अपने इंटेलेक्ट की वॉइस को अच्छे से सुन सकते हैं, उतना हम अपने अंदर क्लैरिटी ला सकते हैं। एंड दिस इज द नेक्स्ट टेक होम मैसेजेस कि आई शुड प्रैक्टिस साइलेंस एवरी डे एंड प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग। तो अब हम अपने लास्ट स्टेप की तरफ आते हैं कि इमोशनल री इंजीनियरिंग को हम कैसे कर सकते हैं। अब हम जब इतने सारे इंटरवेंशन करेंगे, माइंड के लेवल पर हम इंटरवीन कर रहे हैं, हम वॉलंटरली बाय चॉइस एम्पावरिंग थॉट्स को क्रिएट कर रहे हैं, हम साइलेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम पॉज भी दे रहे हैं, हम अपने इन्फॉर्मेशन पे फिल्टर भी लगा रहे हैं, लेकिन जो सारा इंटरवेंशन है एंड स्पेशली द क्रिएशन ऑफ एम्पावरिंग थॉट्स, द बेस्ट परमानेंट इंटरवेंशन एंड द बेस्ट परमानेंट टेक होम मैसेज इज क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ एम्पावरिंग थॉट्स बाय चॉइस। ये हमें इलेक्टिव यानी कि स्टेबल सर्कमस्टांसेस में करने की जरूरत है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप किसी क्योटिक यानी कि अनस्टेबल सर्कमस्टांस में हैं, तो उस टाइम पे हम ये इंटरवेंशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे अभी ये स्टेबल सर्कमस्टांस चल रहा है, ये परिस्थिति टेस्टिंग नहीं है मेरे लिए, मैं आराम से आपसे बात कर रही हूं, आप सुन रहे हैं, इस सेशन के होने के बाद मैं शांति से बैठ जाऊं और इस आर्ट को सीखूं कि कैसे इसकी प्रैक्टिस करूं, कि कैसे मैं एम्पावरिंग थॉट्स को क्रिएट कर सकती हूं, और जब मैं इस टेक्निक को सीख जाऊं तो उसके बाद डेली बेसिस पे जब मैं सुबह सोकर उठूं और सोने से पहले मैं इस प्रैक्टिस को एक्सपीरियंस करूं, एम्पावरिंग थॉट्स को क्रिएट करूं। एंड द बेस्ट थिंग विच आई नीड टू रिमेम्बर इज आई नीड टू डू दैट इन माई स्टेबल एंड इलेक्टिव सर्कमस्टांसेस। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम एम्पावरिंग थॉट्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसका एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम सभी करेंगे, लेकिन उसको करने से पहले एक छोटा सा रिकैप हमें ले लेना चाहिए कि आज हमने इमोशनल इंजीनियरिंग के बारे में क्या सीखा। तो सबसे पहले तो हमने अपने इमोशंस को पहचाना, फिर हमने प्रैक्टिकल टिप जो अपने लिए ली कि आई नीड टू टेक अ पॉज ऑफ 1 सेकेंड, and second thing is that instead of being emotional I should be compassionate. Third recap is I need to acquire this skill of creating empowering thoughts voluntarily. I should put a very nice filter on the source of my thoughts, that is the information, and a chain of empowering thoughts in the elective and stable circumstances. To aaiye chalte hain इस प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन को एक्सपीरियंस करते हैं। अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में बिठाते हुए अपने शरीर को एकदम रिलैक्स कर देंगे। 3 बार गहरी लंबी सांस लेंगे, इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल। 1 बार और, एंड थर्ड टाइम। अब अपना पूरा ध्यान अपने मन पर केंद्रित करेंगे। इमेजिन कीजिए जैसे कि आप किसी सागर के किनारे खड़े हैं, ठंडी ठंडी लहरें आती हैं और मेरे पांव को छूकर चली जाती हैं। इसी तरह से मेरे मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं और मुझे छूकर जा रहे हैं। मैं किसी भी विचार को जज नहीं कर रही। आज पहली बार मैं एक स्पेक्टेटर, एक ऑब्जर्वर के रोल से अपने आप को देख रही हूं, अपने ही मन को देख रही हूं। मेरे मन में कई तरह के विचार आ रहे हैं, मैं उनको आने की परमिशन भी दे रही हूँ और उनको जाने की परमिशन भी दे रही हूँ। आई एम लेटिंग एवरी थॉट पास अवे फ्रॉम माई सेल्फ। थॉट्स आर कमिंग इन लाइक वेव्स एंड गोइंग बैक। अपने आप को रियलाइज कीजिए एज अ पॉइंट ऑफ लाइट, एक ब्यूटिफुल एनर्जी जो इस शरीर में सेंटर ऑफ द फोरहेड के बीच में स्थित है। आई एम दिस ब्यूटिफुल एनर्जी लाइक अ शाइनिंग स्टार, अ पॉइंट ऑफ लाइट। अब एक एलिवेटेड थॉट क्रिएट करेंगे, आई एम अ पीसफुल बींग। मैं एक पीसफुल एनर्जी हूं और ये पीसफुल वाइब्रेशंस मुझसे एमिट होकर मेरे बॉडी के हर एक ऑर्गन में एब्जॉर्ब हो रही है, हर एक सेल में एब्जॉर्ब हो रही है। मेरे बॉडी का एक एक सेल इन पीसफुल वाइब्रेशंस को एक्सपीरियंस कर रहा है। माय होल बॉडी इज बिकमिंग पीसफुल। आई एम अ पीसफुल बींग। मैं शांति के अनुभव को एक्सपीरियंस कर रही हूं। आई एम अ पीसफुल बींग। ये वाइब्रेशंस ऑफ पीस मुझसे एमिट होकर इस पूरे वातावरण में फैल रही हैं। मैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कर रही हूं। परमात्मा ने मुझे यहां पर अच्छे अनुभव करने के लिए भेजा है, शांति को एक्सपीरियंस करने के लिए भेजा है। जो कोई भी मुझसे बात करेंगे उन्हें भी शांति का एक्सपीरियंस होगा। मेरे माइंड में जो थॉट्स क्रिएट होंगे वो पीसफुल होंगे और पीसफुल फीलिंग्स को जनरेट करेंगे और मैं शांति के इमोशन को एक्सपीरियंस कर रही हूं और करती रहूंगी। आई एम अ पीसफुल बीइंग। आई एम अ फियरलेस सोल। आई एम अ पावरफुल सोल। परमात्मा की एनर्जी मेरे चारों तरफ मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। दीज गोल्डन रेज फ्रॉम द गॉड आर प्रोटेक्टिंग मी लाइक अ एनर्जी शील्ड। इस प्रोटेक्टिव ऑरा के बीच कोई भी नेगेटिव इमोशन एंटर नहीं कर सकता, कोई भी बीमारी एंटर नहीं कर सकते। आई एम फीलिंग वेरी सिक्योर एंड वेरी प्रोटेक्टेड। आई एम द मोस्ट फॉर्चुनेट सोल इन दिस होल यूनिवर्स। आई एम अ पीसफुल सोल। आई एम अ पावरफुल सोल। I am safe. My whole body is very healthy. The whole universe is safe. Om Shanti.
ओम शांति। सम्माननीय डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं और आप सभी को अप्रिशिएट भी करता हूं कि आपने कोरोना के इस आपातकाल में मानवता की सच्ची सेवा की है और कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा पुण्य है, ये आपकी बहुत बड़ी बहादुरी है। ये बहादुरी निश्चित रूप से आपको कई कदम आगे बढ़ाएगी, क्योंकि मनुष्य के जीवन में जब ऐसी चीजें आती हैं जो भय पैदा करती हों, जो बहुत बड़ा चैलेंज होता है, परिवार की ओर से भी कई रुकावटें आती हैं ऐसे समय पर, ऐसे में अपनी बहादुरी का परिचय देना, कर्तव्य परायण होना, ये सोचना कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा भला, बहुत सुंदर विचार है, बहुत सुंदर शक्तिशाली संकल्प है ये। तो इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद भी देना चाहूंगा, सारे देशवासियों को, जो भी मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, नर्सिज हैं, सबको। सचमुच राष्ट्र आपका कर्तव्य है, बहुत सुंदर कार्य आप कर रहे हैं। मैं आज आपको संकल्प शक्ति के बारे में कुछ कहना चाहूंगा, बहुत बड़ा टॉपिक है। हर मनुष्य के पास मन है, मन में विचार उठ रहे हैं, उसके विचार ही उसके सुख का या दुख का कारण है, उसके विचार ही उसे पीड़ा का अनुभव कराते हैं या बिल्कुल अनुभव नहीं होने देते, उसके विचार ही समस्याओं में उसे महान बनाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं, और उसके विचार ही उसे निराशा के अंधकार में डुबो देते हैं, दिशाविहीन कर देते हैं। आज के दौर में संकल्पों को ठीक करना परम आवश्यक है। चारों ओर भय का माहौल है, और मैं आप सबको बता दूं और आपको संसार को बताना है कि भय इस निगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। हम सुनते भी रहते हैं कोरोना से कम लोग मर रहे हैं, भय से ज्यादा मर रहे हैं। बड़ी नेचुरल सी बात है, एक पेशेंट बेड पर है, सारे दिन में उसके आगे से चार डेड बॉडी निकले हों जिनकी डेथ कोरोना से हुई हो, तो भयभीत होगा ही, कहीं मेरा नंबर ना आ जाए। परिवार वालों के चेहरे नहीं देख पाता, प्रिय जनों से नहीं मिल पाता, अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाता, एक दयनीय स्थिति है। तो संसार में भय व्याप्त होता जा रहा है, हम सभी को निर्भय बनना है, मन को स्ट्रांग करना है, बहुत जरूरत है आज के समय की। भय मनुष्य के ब्रेन को भी कमजोर करता है, सेंसिटिव बना देता है, वो सेंसिटिव माइंड निगेटिव एनर्जी को खींचने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है। हमारे पास बहुत बड़ी शक्तियां हैं। आज मैं आपको आप सभी के अंदर छुपी हुई शक्तियों की भी अवेयरनेस देना चाहूंगा, और उन्हें हम जगाएं, इसकी सहज विधि। मनोवैज्ञानिकों से हम सब ने सुना है कि मनुष्य के पास अनंत शक्तियां हैं, पर वो सोई रहती हैं, उन्हें जगाया जाए। पर जगाया कैसे जाए, ये माने ही सिखाता कोई, आज हम आपको सिखाएंगे। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, अब से 50 साल पहले मनुष्य का मन इतना कमजोर नहीं था जितना आज है, अब से 100 साल पहले उसका मन और स्ट्रांग था। देखो अंग्रेजों का राज था, समस्याएं समस्याएं थी, कोई सुविधा नहीं थी, कोई एजुकेशन नहीं थी, फिर भी मनुष्य का मन स्ट्रांग था। आज बहुत सुख सुविधाएं हैं, सब काम लैपटॉप पर होता है, भोजन बनाने की सुविधाएं, वाहनों का सुख, कम्युनिकेशन की सुविधा, लेकिन मनुष्य का मन कमजोर हो गया। होना चाहिए था मनुष्य को ईजी, हो गया वो बहुत बिजी। मनुष्य के मन की स्पीड होनी चाहिए थी स्लो, हो गई बहुत फास्ट। आप सबको ज्ञात रहे, एक कॉमन मैन के मन में प्रति मिनट 25 संकल्प उठते हैं। जब वो टेंस होता है, जब परेशानियां होती हैं, तो ये स्पीड बढ़ जाती है, 40 तक पहुंच जाती है। अगर हम इसको स्लो डाउन कर दें, धीमा कर दें, तो हम बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। मनोवैज्ञानिकों ने जो सर्वे किए हैं, उन्होंने पाया किसी मनुष्य के मन में 24 घंटे में 60,000 संकल्प उठ रहे हैं, किसी के में 50, बहुत कम थे जिनके मन में 40। लेकिन हम मेडिटेशन के द्वारा इसको और डाउन कर सकते हैं, 30-20 हजार पर ला सकते हैं। और एक योगी, एक्सरसाइज करने वाले योगी नहीं, योगी माना जिसने अपना नाता परमात्मा से जोड़ लिया हो, वो तो अपने विचारों को 1000 पर डे तक भी ला सकता है। ऐसे में उसका मन बहुत शक्तिशाली हो जाएगा और उसको कई शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। तो हमें मन की शक्ति बढ़ानी है, वो नष्ट हो रही है वेस्ट थिंकिंग से, वो नष्ट हो रही है मन की फास्ट स्पीड से, वो वेस्ट हो रही है ईर्ष्या द्वेष घृणा और वैर भाव से, उसको वेस्ट कर रहे हैं मनोविकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। हमें अपने को पुनः सशक्त करना है। इस संसार में जो एक वेव फैल गई है नेगेटिव थिंकिंग, वेस्ट थिंकिंग, टू मच थिंकिंग, इसको हमें रोकना होगा। यह हमारा परम कर्तव्य है इस समय। बहुत स्टूडेंट जब हमसे कांटेक्ट करते हैं, वो शिकायत करते हैं हम बहुत सोच रहे हैं, हमने 4 घंटा पढ़ा है सब भूल गया है, ब्रेन की शक्ति मेमोरी पावर कमजोर होती जा रही है, ये सब समस्याएं आज संसार में बहुत बढ़ती जा रही हैं। जिम्मेदार कौन है? संसार में बढ़ते हुए मनोविकार पहले जिम्मेदार, दूसरे जिम्मेदार ये इलेक्ट्रॉनिक्स के साधन, तीसरी जिम्मेदारी मनुष्य ने मॉरल वैल्यूज को पूरी तरह भुला दिया है। उसने मान लिया है मनी इज एवरीथिंग, धन है तो सब कुछ है, कैसे भी लूटो कमाओ पाप करो धन चाहिए। लेकिन ये गलत मान्यता है, धन उसे थोड़ा सुख तो दे रहा है पर लंबा बड़ा सुख समाप्त करता जा रहा है, धन उसे व्यसन और साधनों में डुबो रहा है, उसकी निर्मलता उसकी पवित्रता उसकी मॉरलिटी को नष्ट करता जा रहा है। और यही कारण है मैं आपका ध्यान खिंचवाना चाहूंगा, संसार में बढ़ रहे हैं मानसिक रोग। हमारे यहाँ भी हॉस्पिटल है, हमारा अपना साइकेट्रिक डॉक्टर है, 20 साल पहले उसके पास 3-4 पेशेंट आते थे रोज, 10 साल मैंने पूछा कितने आने लगे, 10-12 हो गए, और आजकल उसको अति व्यस्त कर दिया है। मैं कहता हूँ उसको, डॉक्टर साहब जरा बच के रहो, कहीं तुम भी पेशेंट ना बन जाना, ये हाल हो रहा है। और एक समय जल्दी आने वाला है, 2-4 साल में ही आप देखेंगे, साइकेट्रिक डॉक्टर हर जगह नहीं है, अभी टाउन में गांव में कहाँ साइकेट्रिक डॉक्टर। आप चाहे सर्जन हैं, चाहे जनरल प्रैक्टिशनर हैं, चाहे किसी चीज के स्पेशलिस्ट हैं, मानसिक रोगी आप सबके पास आएंगे और आपको उनका इलाज करना ही पड़ेगा। अब दवाइयां कितनी हैं ये तो आप भी जानते हैं, और मैं आपको राज बता देता हूं, ये बीमारियां हैं मन में, चाहे डिप्रेशन हो, सिजोफीनिया हो, ओसीडी हो, और जो जो भी आप नाम लेते हैं, रात को नींद ना आती हो, ब्रेन हाइपर एक्टिव हो रहा हो, कईयों को बार बार हाथ धोने की बार बार नहाने की आदत, जो भी नाम इसका मेडिकली आप लेते हैं, ये सब बीमारियां मन में हैं। ब्रेन तो उसका प्रोजेक्शन है केवल, और हम दवाई दे रहे हैं ब्रेन को तो थोड़ा फायदा हो जाता है, लेकिन पूरा फायदा नहीं हो पाता, हमें मन को ट्रीट करना होगा। देखिए मेरे पास, मैं डॉक्टर नहीं हूं पर आजकल लोगों को मदद करता हूं, तो मेरे पास कई केस ऐसे आए जो इन्होंने ये कहा, हम सारा दिन हाथ धोते हैं, आजकल तो कोरोना वाले कह रहे हैं कि 20 बार हाथ धो, लेकिन वो तो 100 बार धोते हैं, स्किन डिजीज हो जाती है, नहाते रहते हैं बहुत देर तक। मैंने उनसे कई चीजें पूछी, आपको पता है कि आप नहाते हो 4 घंटा? हाँ पता है। ये गलत है? ये पता है? पता है ये गलत है। बार बार हाथ धो रहे हैं, ये गलत है? गलत है। तो मुझे महसूस हुआ इनके पास कंट्रोलिंग पावर नहीं है। अगर इनको मेडिटेशन से कंट्रोलिंग पावर दे दी जाए, ठीक हो जाएंगे। तो चार पांच केस हमने ऐसे लिए और उनको कुछ अच्छे अभ्यास सिखा दिए और बहुत जल्दी वो इस बीमारी से मुक्त हो गए। बड़े खुश हुए कि सारी टंकी हम खाली कर देते थे, एक साबुन रोज जाता था, सब लोग परेशान होते थे हमसे, सब ठीक हो गया। मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन बहुत बढ़ता जा रहा है। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स लिए हैं और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के द्वारा उनको ठीक होते देखा है। मैं वो बातें आपके सामने शेयर करना चाहूंगा ताकि आप भी इस स्पिरिचुअल जो ये थेरेपी है, हीलिंग एनर्जी है जो हमारे अपने मन में, इसका बहुत अच्छा सदुपयोग कर सके अपनी प्रैक्टिस में। थोड़ी बहुत दवाई तो देनी पड़ती है और देनी ही चाहिए और पेशेंट को भी लेनी चाहिए, पर अगर स्पिरिचुअलिटी को हम जोड़ देंगे तो दवाइयां बहुत ज्यादा काम करेंगी, हमारे पास डबल फोर्स काम करेगी, हमारे मन की हीलिंग एनर्जी हमें जल्दी ठीक करेगी। तो आप सभी को ये काम करना है, इसलिए पहले मैं आप सभी को कहूंगा अपने को थोड़ा मेडिटेशन का समय भी दें, सवेरे उठकर कुछ अच्छे अभ्यास भी करें, अपना कनेक्शन अपने परमपिता से भी जोड़ें ताकि उसकी एनर्जी आपको आ जाए, क्योंकि संसार की स्थिति दिनों दिन भयावह होती जाएगी। हम इस सृष्टि चक्र को जानते हैं, हमारे पास आदि मध्य अंत का ज्ञान है, हमें पता है अब ये युग बदलने वाला है, इसलिए मेडिकल साइंस पूरी तरह हैंड्स अप कर देगी, ऐसा समय आ रहा है। डोंट माइंड प्लीज जो कुछ मैं कह रहा हूं। अब भी आप देखते होंगे कई पेशेंट आपके पास ऐसे आते हैं जिनका सब कुछ ठीक है, सारा इन्वेस्टिगेशन आप करा देते हैं, सब कुछ ठीक है, फिर भी बीमारी है, दर्द बहुत है, समझ में नहीं आता क्या करें। तो कुछ अंदर की बीमारी भी है। दूसरी चीज, ब्रेन सब कुछ कंट्रोल करता है बॉडी का, और ब्रेन आजकल निगेटिव एनर्जी के कारण बहुत कमजोर हो गया है। आप सब मेरे से ज्यादा जानते हैं, अगर मन उसको टेंशन हो तो उसके ब्रेन के जो भिन्न भिन्न केंद्र हैं उनसे कैसा सिक्रेशन होता है, कितने केमिकल सिक्रेट होते हैं, मुझे इसका संपूर्ण ज्ञान नहीं, आपको ज्यादा होगा। आप विचार करें, अगर एक मनुष्य बहुत संतुष्ट हो, उसका चित्त शांत हो, वो बहुत खुश रहता हो, वो बहुत पॉजिटिव हो, वो एनर्जेटिक हो, तो उसके ब्रेन से कितने अच्छे केमिकल्स का सिक्रेशन होगा और वो हेल्थ के लिए कितना सुंदर होगा। इसलिए कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। खुशी से तो डेड सेल्स भी जीवित हो जाते हैं, जीन्स में परिवर्तन आ जाता है। इन चीजों को हम सबको बहुत ध्यान रखना है। तो हमारे मन में बहुत शक्तियां हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, जैसे टाइगर का बच्चा टाइगर होता है, हम सभी सर्वशक्तिवान भगवान के बच्चे हैं, उसे हम शिव बाबा कहते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसे बाबा ही कह देते हैं, लोग समझते हैं ये किसी मनुष्य को बाबा कह रहे हैं। नो, जो पिता है हमारा, सुप्रीम फादर है, सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी है, पॉइंट सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, वेरी सटल पॉइंट, उससे हमें अपने को कनेक्ट करना है। हम उसके बच्चे हैं, हम उसे गॉड फादर कहते हैं ना, हम उसे माता पिता कहते हैं ना, वो हमारा पिता है, हम उसकी संतान हैं। इस सत्य को हमें स्वीकार करना है, पहली चीज। तो ही इज ऑलमाइटी, तो हम वीक होंगे क्या? टाइगर का बच्चा टाइगर होता है, ऑलमाइटी का बच्चा माइटफुल होगा या नहीं, रियलाइज करें आप सभी, वी आर मोस्ट पावरफुल। बस ये संकल्प करते ही आपकी सोई हुई शक्तियां जगने लगेंगी। ये है शक्तियों को जगने का, जगाने का तरीका, ये है अपनी शक्तियों की अवेयरनेस। मनुष्य के साथ क्या हो रहा है, आज छोटी सी परिस्थिति आई, घबरा गए, सुसाइड करने तक की सोचने लगे। पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया, पत्नी इंसल्ट करने लगी या पति इगोइस्टिक बिहेवियर करने लगा, मन मुटाव बढ़ा, डिप्रेशन में आ गए, रात को नींद नहीं आ रही है, ये स्थिति आजकल की हो गई है। तो यदि हम अपने मन को स्ट्रांग बनाएंगे तो इन सभी बातों को लाइट ली लेंगे, इजी ली लेंगे, ये हमें पूरी तरह सीखना है। और समय की ये डिमांड है, ध्यान से सुनेंगे, कि न हमें खुद हर्ट होना है, न खराब वचन बोलकर दूसरों को हर्ट करना है। बहुत ध्यान दें, संबंधों में प्यार घोलना है हमें, संबंध जो हमारे अपने हैं। देखो, सबसे बुरा इफेक्ट मन पर अपनों का पड़ता है, अपने बुरा व्यवहार कर रहे हो, अपने लोग अपमानित कर रहे हो, तो मेंटली मनुष्य पर बुरा इफेक्ट होता है। और यही कारण है आजकल, क्योंकि मैरिजेज बहुत फेल होने लगी हैं, जो लव कर रहे थे लड़के लड़कियां, जीवन भर जीने मरने के वायदे कर रहे थे, वो 6 मास में 1 साल में डिवोर्स करते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। इसलिए हमारा जो व्यवहार है उसमें हम ईगोलेसनेस को अपनाएं, स्वीटनेस को अपनाएं, एक दूसरे से टू मच एक्सपेक्टेशंस न रखें, लेकिन एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस का ख्याल भी करें। मनुष्य तो एक दूसरे से कुछ चाहेगा, ख्याल भी करें हम उसका, लेकिन हमें टू मेनी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखनी चाहिए। हमें अपनी वाणी को, अपनी टंग को बहुत स्वीट बनाना होगा। और ये याद रखेंगे सभी कि जैसा व्यवहार हम दूसरों से करेंगे वैसा ही व्यवहार हमें प्राप्त होगा। जो कुछ हम दूसरों को देंगे वो कई गुना होकर हमारे पास आ जाएगा। हम कटु वाणी बोलते हैं, कटु वाणी सुननी पड़ेगी। हम दूसरों के ईगो को हर्ट करते हैं, वही हमारे साथ भी होगा। इसलिए मैं बस मॉरलिटी के लिए इतना ही कहूंगा, सभी एक दूसरे के गुड फ्रेंड बन जाओ। जीवन की यात्रा पर सच्चे साथी, सुखदाई साथी, सुखदेव, गुड फ्रेंड, एक दूसरे को हल्का करने वाले, एक दूसरे को खुशी बांटने वाले, एक दूसरे की सुनने वाले, केवल सुनाने वाले नहीं, सुनने वाले भी। तो हम सभी मुक्त रहेंगे बहुत चीजों से, क्योंकि जैसा समय आ रहा है उसमें हमें बहुत चीजें फेस करनी है, तो माइंड का बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। तो एक विधि अपनाएंगे, रोज सवेरे थोड़ा जल्दी उठेंगे, डॉक्टर्स को भी थोड़ा ध्यान देना है, कभी कभी आपको रात को जागना पड़ता है, वो अलग बात हो गई, लेकिन आप ऐसा अपना रूटीन बनाएं कि आप थोड़ा जल्दी उठ जाएं। सवेरे एक आधा घंटा आप अपने को दे दें रोज, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन, यहाँ राजयोग मेडिटेशन की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आप अपने परम पिता ऑलमाइटी से जुड़ जाएं। और देखिए, भगवान से आपको कुछ मांगना नहीं है, केवल उससे जुड़ना है। मैं छोटा सा उदाहरण दे के आपके सामने ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। जिस ऑब्जेक्ट को हम विजुअलाइज करते हैं उससे हम कनेक्ट हो जाते हैं, उसके वाइब्रेशन हमको आने लगते हैं। आप अपने कमरे में बैठे हैं अभी, आप आकाश में उगे हुए सूरज को विजुअलाइज करो, जो बादलों के ऊपर है, आप उससे जुड़ गए, उसकी हीट, उसकी सटिल एनर्जी आपकी तरफ आने लगी। ऐसे ही परमात्मा के स्वरूप को विजुअलाइज करना है, बस यू आर कनेक्टेड टू हिम और उसकी एनर्जी आपको आने लगी। ये मेडिटेशन आप सीख लेंगे, इसका आप अभ्यास करेंगे तो सवेरे सवेरे आप बहुत एनर्जेटिक हो जाएंगे। जैसे आप अपने कार्यों पे जाएंगे, कोरोना का समय चल रहा है तो किट वो सब पहन के, ड्रेस, मास्क लगा के, सैनिटाइजेशन करके, बहुत सेफ्टी के साथ आप जाएंगे ना, भोजन खा के, भूखे भी ना रहें, तैयारी करनी पड़ती है। ऐसे ही रोज कार्यों पर जाने से पहले हमें अपनी मानसिक तैयारी भी करनी है, मन को स्ट्रोंग भी बनाना है, ताकि आज सारे दिन में जो चैलेंजेज आएंगे उसको हम बोल्डली फेस करेंगे, परेशान नहीं होंगे, निगेटिव नहीं होंगे, फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, और पावरफुल बनेंगे। संकल्प कर दो, जितनी परिस्थिति आए हम उतने ही पावरफुल बने। अगर ये फॉर्मूला आप अपना लेंगे तो मानसिक रूप से कभी आप हार नहीं मानेंगे, परिस्थितियां आपसे हार मान जाएंगी। तो सवेरे उठें, उठते ही पहले 10 मिनट हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागृत होता है, एक्टिव रहता है, तो 5-7 मिनट कुछ सुंदर विचार कर दो, अपने को एनर्जेटिक करो, चार्ज करो, कमरे से बाहर आ जाओ, थोड़ा सा बेड से उठ जाओ और संकल्प करो, मैं ऑलमाइटी की संतान हूं, देयरफॉर आई एम मोस्ट पावरफुल। आप एक संकल्प ले सकते हैं, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं, 7 बार कर लो, मैं ऑलमाइटी भगवान की संतान मास्टर ऑलमाइटी हूं, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं। आपकी सोई हुई शक्तियां जग जाएंगी, बहुत सुंदर होगा। मैं निर्भय हूं, बहुत जरूरी है आज के समय में। मैं बहुत बोल्ड हूं, स्वयं मेरा परमपिता मेरा साथी है, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं निरोग हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मेरे जैसा भगवान कोई नहीं। ये सुंदर संकल्प कर दो, मैं बहुत सुखी हूँ, हर कदम पर सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जो मेरे पास आएगा वो हेल्दी होकर जाएगा। सवेरे अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये थॉट दे दो पावरफुली, जो भी पेशेंट मेरे पास आएगा वो हेल्दी होकर जाएगा। इस तरह आप अपने को चार्ज करें रोज सवेरे सवेरे, बहुत ही सुंदर अनुभव होंगे, मन की स्पीड स्लो हो जाएगी। एक गलती आप न करें जो लोग करते हैं दुनिया में, उठते ही व्हाट्सएप देख रहे, फेसबुक देख रहे, टीवी देख रहे, देर से उठे तो न्यूज़पेपर देख रहे हैं। आप सभी वेल एजुकेटेड हैं और इस सब्जेक्ट से वेल नोन हैं। सवेरे उठते ही हमारा 10 मिनट सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है। आपने उठते ही समाचार पढ़ लिया, कोरोना से देश में 50 डॉक्टर्स की मृत्यु हो गई, बहुत बुरा मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड को चला गया। नहीं करेंगे ये काम आप, 15 मिनट के बाद पढ़े देखेंगे सब कुछ। पहला आधा घंटा आपके लिए है, भोजन भी तो आप खा के जाते हैं, चाय पियेंगे, नहाए धोएंगे। आप आधा घंटा नहीं दे सकते, 20 मिनट तो पक्का कर दें हमें अपने को देना है। उसमें हमें कुछ ये चीज ना पढ़नी है, ना व्हाट्सएप देखने, ना फेसबुक पे जाना, ये काम बाद के। ये ना सोचो आप बाद में टाइम नहीं मिलेगा, अभी कर ले। सवेरे पहले 10 मिनट में ये सब करना मोस्ट डेंजरस फॉर लाइफ। युवक आज यही तो कर रहे हैं, इसलिए बहुत परेशानी हो रही है उन्हें। हम तो बहुत लोगों को समझा रहे हैं, पर जिनको ये व्यसन लग जाता है वो इससे छूट नहीं पाते हैं। इस व्यसन के अधीन आप सबको नहीं होना है, अन्यथा सवेरे उठते ही आप अपने अंदर ये निगेटिव एनर्जी भर लेंगे और इससे बहुत नुकसान होगा। डिप्रेशन के केसेस के लिए, मानसिक रोगों के लिए हमने जो प्रैक्टिसेस लोगों को कराई, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, वो आपके सामने रख देता हूं, आप भी उसे अडॉप्ट कर लेंगे। बहुत डॉक्टर्स ने कर लिया है, तो मेडिसिन के साथ साथ और अच्छी राहत मिल जाएगी लोगों को, और मानसिक रोगों में तो ये सफल प्रयोग हैं। एक प्रयोग मैं आप सबके सामने रख रहा हूं, पानी चार्ज करके देना। पेशेंट को सिखाया जा सकता है वे खुद पानी चार्ज करें और पिए। मैंने ये बात वैज्ञानिकों से सीखी, क्योंकि कई वैज्ञानिक वाइब्रेशंस का इंस्ट्रूमेंट्स का, सॉन्ग्स का क्या इफेक्ट होता है जल पर, उसका प्रयोग करते रहे हैं। मैंने देखे और मैंने सोचा यदि हम पानी को चार्ज कर दें। उन्होंने केवल इतना किया, पानी को देखा, दृष्टि दी उस पर और कहा थैंक यू। दूसरे गिलास को देखा, कहा आई लव यू, और वाइब्रेशंस चेंज हो गए। पानी पानी में जो वेव्स थी उनके रंग बदल गए, उनके शेप बदल गई। उन्होंने मेडिकली इस पर प्रयोग किए, पेशेंट्स पे किए, ऐसे पानी के लोगों को पिलाया और उनके जीन्स में क्या परिवर्तन था वो रीड किया, तो बड़ा वंडरफुल था। तो यहीं से मैंने सीखा। तो मैंने सोचा पानी को अगर हम पावरफुल्ली चार्ज कर दें, थैंक्स कहना, आई लव यू कहना है, तो छोटे विचार हैं। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। पानी का गिलास ऐसे लें, उस पे नजर डालें, 5-7 बार कर दें संकल्प, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं। पानी एब्जॉर्ब कर लेगा इन संकल्पों के वाइब्रेशंस को, पानी चार्ज हो गया। मैंने सबसे पहले ये प्रैक्टिस कराई बुखार के पेशेंट्स को, और बुखार ठीक होने, एक एक दिन में ठीक हो गया। एक केस तो हमारे यहाँ का ऐसा है, हमारा अपना ही हॉस्पिटल है, वो नर्स बहन भी है अभी यहीं, 2 साल पहले की बात है। उसको बुखार चला 8 मास, मैं भी डॉक्टर के पास था, वो आई और इतनी मोटी फाइल उसने पटक दी टेबल पे गुस्से में, कि अब बोलो क्या चेकअप कराऊं। अहमदाबाद, हमारे यहाँ पालनपुर है मेडिकल सेंटर, सब जगह तो करा लिया, मुंबई तक करा लिया। डॉक्टर ने देखा भाई क्या हो गया। मैंने डॉक्टर को कहा मैं ठीक कर दूं इसको, डॉक्टर हंसने लगा कि आप करके देख लो भाई। मैंने उसको समझाया कि आप पानी चार्ज करके पियो, ये विधि बता दी, और बस ये उसका भाग्य कहो, गुड टाइम कहो। 3 दिन में उसका बुखार जो 8 मास से चलता आ रहा था ठीक हो गया। बहुत ही अच्छे अनुभव बुखार वालों पर इसके हुए, एक पानी चार्ज करके देना। आप खुद इस पर विचार कर लें, क्योंकि आप मेडिकल नॉलेज से परिपूर्ण हैं, तो ये चार्ज वाटर जब शरीर में जाएगा, शरीर में हमारे 70% से ज्यादा पानी है, और ये मनुष्य के विचारों के कारण, उसके मनोविकारों के कारण, उसकी ईर्ष्या द्वेष नफरत निगेटिविटी के कारण पॉल्यूट हो गया है, गंदा है। अब शरीर में गंदा पानी बह रहा है तो देखो कितनी बीमारियां पैदा कर रहा होगा। ये चार्ज पानी अगर हम पिएंगे तो ये इस पानी को प्योरीफाई करेगा और हम कई बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। मैंने कई पेशेंट कई सीवियर बीमारियों से मुक्त होते देखे हैं, 5 बार पानी को चार्ज करके रोज पीना, एक ये प्रैक्टिस कराई। मैं मानसिक रोगों के लिए आपको कुछ कह देना चाहूंगा, इससे पहले एक चीज और कहूंगा। रात को जब हम सोने जाते हैं तो फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, क्योंकि हमें नींद आती है तो कॉन्शियस माइंड साइलेंट होने लगता है। उस टाइम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज्यादा हीलिंग पावर होती है, इसलिए उस टाइम यदि हर पेशेंट संकल्प करे मैं इस बीमारी से मुक्त हूं, मैं निरोग हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, हाई ब्लड प्रेशर है तो मेरा बीपी नॉर्मल है, कैंसर है तो मेरा कैंसर ठीक हो गया है, हार्ट की प्रॉब्लम है, मेरा हार्ट बहुत स्ट्रांग है, परफेक्ट है, मैं बिल्कुल हेल्दी हूं, हेल्दी हूं, 4-5 बार ये संकल्प करके सोएंगे, सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट कर लेगा और सारी रात हीलिंग करेगा। जो कमांड हमने उसे दे दिया है उसे वो एक्सेप्ट करेगा और हीलिंग करेगा सारी रात हमारे बॉडी की, हमारी उस बीमारी की। बहुत अच्छा होगा। किसको माइग्रेन है, मेरा माइग्रेन पूरा ठीक हो गया है, मैं संपूर्ण हेल्दी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं निरोग हूँ, ऐसे संकल्प सोने से पहले करने चाहिए। उठते ही भी करेंगे तो उसका भी बहुत फायदा होगा। मैं डिप्रेशन की बात कर रहा था या मानसिक रोगों पर, कैसे हम मन की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। मैं कई चीजें आपको सुनाना चाहता हूं, मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस आते हैं। एक बहुत अच्छा अनुभव मुझे याद आ रहा है, हम कराते रहे हैं क्षमा याचना, जो कि कई बीमारियों के मूल में पूर्व जन्मों के पाप कर्म होते हैं। आप जेनेटिक कह देते हैं या हेरिडिटरी कह देते हैं, लेकिन पूर्व जन्मों से भी हम बीमारियों को लेकर आते हैं। आप देख रहे होंगे 5 साल की बच्ची को कैंसर, जन्म लेते ही बच्चा डायबिटिक, 2-4-6 मास में ही पता चला बच्चा हार्ट पेशेंट। ये मेरे पास, मुझे भी ये सब बातें बहुत सुनने को मिलती हैं। तो पूर्व जन्म से भी बीमारियां आती हैं, केवल माँ बाप से ही नहीं, इसके सूक्ष्म कारण है। कि मान लो किसी व्यक्ति को कैंसर है और उसकी कैंसर से मृत्यु हुई है, तो कैंसर के जो जर्म्स हैं, वायरस हैं, वो उसके सूक्ष्म शरीर में भी रहते हैं। और मृत्यु के बाद ये शरीर तो जल जाता है ब्रेन सहित, लेकिन सूक्ष्म शरीर के सहित आत्मा दूसरे शरीर में जाती है, तो वो जर्म्स भी साथ में ले जाती है। मेरे पास बेंगलोर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सिविल सर्जन डॉक्टर लेडी थी, ज्ञान लिया था उसने, 1 साल से राजयोग कर रही थी, तो मेरे पास ये क्वेश्चन लेकर आई कि हमारे यहाँ एक 5 साल की बच्ची को कैंसर हुआ है, डिटेक्ट हुआ है। अभी सारे डॉक्टर मीटिंग कर रहे, विचार कर रहे कि 5 साल की बच्ची को क्यों, किसी की समझ में नहीं आया। मैंने जब उसे ये विधि बताई तो उसने समझ लिया कि पूर्व जन्मों से भी ये सब आता है। तो मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, पंजाब में, बिल्कुल सच्ची घटना है, पिछले साल की है। एक लेडी के गर्भ में बच्चे की पोजीशन उल्टी थी। अब डॉक्टरों ने कहा भाई एक की मृत्यु होगी, या माँ या बच्चा, क्या किया जाए। अभी 10-12 दिन की बात थी, तो हमारे यहाँ हमारे प्रोग्राम्स में आने वाली एक बहन है जो उस सिटी में सोशल वर्कर भी है, जिसने पता नहीं कैसे वो उसके पास पहुंच गए कि भाई आप हमें कुछ मदद करो। इसने जब सब जाना तो हम लोग जो यहाँ सिखाते हैं वो उसने कराया उस माँ से, उस परिवार से। उन्हें कहा ये जो आत्मा तुम्हारे गर्भ में आ रही है, ये तुमसे बहुत नाराज है, तुमने पूर्व जन्मों में इसको बड़ा कष्ट दिया है, अभी ये तुम्हारे घर में जन्म लेना नहीं चाहती, बदला लेने आई है, तुम्हें मार के जाएगी, क्या करें, क्षमा याचना करो, इससे बातें करो और देखो क्या बात सिखाई उसने। तो उसकी माँ ने उस आत्मा से जो उसके गर्भ में थी बात की, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, मैंने आपको पूर्व जन्मों में कष्ट दिया हो, आप मुझे क्षमा करें, आप खुश हो जाएं, आप हल्के हो जाएं, आप हमारे घर में जन्म लो, हम आपको बहुत प्यार देंगे, आपकी पालना करेंगे, पास्ट इज पास्ट रोज करने लगी वो, कई कई बार करने लगी। 10 दिन के बाद गई सोनोग्राफी जो हुई, तो डॉक्टर्स ने देखा बच्चे की पोजीशन ठीक हो गई थी, जन्म हुआ अच्छी तरह से, वंडरफुल घटना। मैंने कई डिप्रेशन के पेशेंट्स को ये कराया क्षमा याचना, मेरे पास वो सब अनुभव हैं। क्षमा याचना करने से जो बैड एनर्जी हमारे तरफ आ रही है वो कट जाती है। मैं उदाहरण देता हूँ, मान लो 1000 साल पहले आप राजा थे और आपने कोई गलत ऑर्डर दे दिया था और हजारों लोग दुखी हो गए थे, बद्दुआएं देते थे, राजा बड़ा निर्दयी है, क्रूअल है, पापी है, पता नहीं कब मरेगा, इसका बुरा हो, इसका ये हो, तो वो जो बैड एनर्जी तब इन लोगों की आपको मिली थी वो अब तक आपका पीछा कर रही है, और वो कई चीजों में आपको ठीक नहीं होने देती। ये बिल्कुल सत्य है। मैं दूसरी घटना भी सुना देता हूँ। हमारे पास ही जोधपुर है, ये लोग भी हैं, अभी जिंदे हैं। वहां के एक बड़े डॉक्टर को सीरियस बीमारी हो गई, रेफर कर दिया गया जयपुर, हालत बिगड़ती गई। इस परिवार का फ्रेंड हमारे यहाँ आने वाले एडवोकेट हैं, उनको इसने कहा भाई आप लोग ज्ञान ध्यान करते हो, कुछ पता लगाओ कैसे बच सकता है हमारा डॉक्टर, हमारा पापा। तो भगवान को भोग लगवाया और जो संदेशी बहन थी ट्रांस मैसेंजर, उसने एक सीन देखा कि पिछले जन्म में ये जो डॉक्टर है ये प्रिंस था, बगीचे में बैठा है, कोई ब्राह्मण आता है, दोनों की बातचीत होती है, विवाद बढ़ता है, लड़ाई होती है और प्रिंस ने उसको तलवार से मार दिया है। कहा उस ब्राह्मण का जो श्राप है वो इसको ठीक नहीं होने दे रहा है, क्या करें, उससे क्षमा याचना करो। और जब ये बात इस डॉक्टर को बताई गई जयपुर में हॉस्पिटल में, जबकि वो बिल्कुल ऐसी स्थिति में था कि आज गया कल गया, इसको रियलाइज हो गया इट इज ट्रू, और इसने हाथ जोड़कर क्षमा याचना शुरू की। और आप ये बात सुन के आश्चर्यचकित भी होंगे, प्रसन्न भी होंगे। 4-5 दिन में ही ठीक होने लगा, 15 दिन में ठीक होकर वापिस अपनी डिस्पेंसरी पहुंच गया। सच्ची घटनाएं हैं ये, क्षमा याचना। ये बैड एनर्जी हम सबको बहुत आ रही है। मैं हमेशा डॉक्टर्स को एक बात कहता हूं कि 2-4 पेशेंट का रोज फ्री इलाज किया करो, उनकी दुआएं आपके लिए बहुत बड़ा खजाना होगा। मैं देखता हूँ कई डॉक्टर्स, ग्वालियर में मैं गया, एक बड़े डॉक्टर जिसने बहुत पैसा कमाया था, बहुत फेमस, पास लोग खड़े थे, मैं गया था उनके घर, कहा डॉक्टर साहब हमसे कुछ भी नहीं लेते, चाहे हम सोनोग्राफी कराएं, एक्सरे कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्यों कुछ नहीं लेते आप, बड़ी पुण्य आत्मा हो। कहने लगा रे भाई पैसा बहुत कमा लिया, अब तो मैं दुआएं कमा रहा हूँ, मुझे बड़ा सुख मिला उसकी बात सुन के। और आसपास कम से कम 15 लोग खड़े थे, सबके नैन भर आए, ये देखो ऐसा डॉक्टर जो महान पुरुष है, जो पुण्य आत्मा है, जो केवल धन के लिए अब नहीं सोच रहा है, सुख देने की सोच रहा है, ऐसे डॉक्टर्स हमारे देश का गौरव है। और हमारे देश में ऐसी महान आत्माएं बहुत हैं, एक डॉक्टर नहीं बहुत हैं, आप में से कई ये पुण्य करते होंगे। तो मैं डिप्रेशन की बात कर रहा था, क्षमा याचना, क्योंकि जो भी डिप्रेशन हो रहा है आपको उसका कुछ खास कारण नजर नहीं आएगा। कई लोग तो ये कि नौकरी में प्रमोशन नहीं हुआ इसलिए डिप्रेशन में आ गए, पत्नी ने थोड़ा सा ये कर दिया है इसलिए डिप्रेशन में आ गए, बच्चा बुरे संग में जा रहा है इसलिए डिप्रेशन में आ गए। आपको देख मेजर कारण कुछ भी नहीं दिखाई देगा, पूर्व जन्मों के पाप कर्मों का इफेक्ट होता है ये आपको दिखाई देगा। इसलिए राजयोग से ये विकर्म नष्ट होते हैं, राहत मिलती है मनुष्य को। तो मैंने कई चीजें कराई ऐसे पेशेंट्स के साथ, एक पानी चार्ज करके पियो, दूसरा क्षमा याचना करो सवेरे उठते ही, उन सबको क्षमा कर दो जिनको जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, और उन सबसे क्षमा मांग लो जिनको आपने कष्ट दिया है। ये दोनों काम करने हैं। ये कराया तो एकदम बोझ जैसे हट गया। और दूसरी चीज कराई, ब्रेन को एनर्जी देना, मैं बता रहा हूं आपको। और एक चीज कराई, सवेरे उठकर एक चीज लिखना है 108 बार, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मीन्स आई एम ए पावरफुल सोल। ये लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए ये सीक्रेट आप सबको जानना चाहिए कि जो संकल्प हम बार बार करते हैं उससे उसी तरह की एनर्जी जनरेट होती है। ये एनर्जी हमारे ब्रेन को जाती है बार बार, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, आई एम मोस्ट पावरफुल सोल। आप 108 बार लिख रहे हैं, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं ब्रेन को, ब्रेन इस एनर्जेटिक हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, डिप्रेशन जाता रहेगा। बहुत सफल हुए हैं ये प्रयोग, जिनको ज्यादा सोचने की आदत, जो बहुत इमोशनल, जो बहुत फीलिंग में रहने वाले, जो बहुत निगेटिव रहने वाले, सबसे मैंने कराया, हजारों केस होंगे, कई हजार, सब ठीक हो गए, 21-21 दिन में ठीक हो गए। ब्रेन को एनर्जी देना, ये भी एक बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट रहे हैं, माइग्रेन के पेशेंट, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट और ब्रेन से जुड़ी हुई जितनी बीमारियां, ट्यूमर भी लोगों के डिजोल्व हुए। मेथड है, दोनों हाथ हम रब करेंगे अच्छी तरह और मन में संकल्प करेंगे, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, आई एम मोस्ट पावरफुल पर्सन, आई एम मोस्ट पावरफुल, 3 बार करें, आपके हाथों में एनर्जी आ गई है, यू कैन चेक, वाइब्रेशंस आपके हाथों में आ गए होंगे, अभी आप करके देख लें। और फिर ये हाथ ऐसे रख दें, आंखें बंद कर लें, ये एनर्जी आपके ब्रेन को जाएगी, आपका ब्रेन नॉर्मल होगा, शांत होगा, जो हाइपर एक्टिव हो गया वो ठीक हो जाएगा। कई हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए हमने ये कराया, उनकी माताओं ने किया, ठीक हो गए बच्चे 21-21 दिन में, जो बहुत हाइपर एक्टिव थे, चैन से नहीं बैठते थे, पढ़ते नहीं थे, लड़ाई झगड़ा करके आते थे, बिल्कुल नॉर्मल हो गए 21-21 दिन में। तो थेरेपीज, स्पिरिचुअल थेरेपीज भी आप इसमें जोड़ लेंगे। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, ये लिखना तो बहुत ही हितकारी हुआ है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट जिनको घुटने दर्द, घुटनों को एनर्जी देना हमने प्रैक्टिस कराई, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, हाथ यहाँ रखो, 10 मिनट सवेरे 10 मिनट शाम कर दो, ये घुटने दर्द गायब, बहुतों के ठीक हो गए हैं। पेट में तकलीफ है, पेट पर रखो, डायबिटीज के लिए पेनक्रियाज को एक्टिव कर लो, ऐसे करो, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, पेनक्रियाज, लीवर के लिए लीवर पे, किडनी के लिए किडनियों पे, किडनी के कई केस ठीक हुए हैं, 10 तो मुझे अभी भी ख्याल आ रहे हैं, ऐसे ऐसे केस। एक मुंबई के हाई कोर्ट के वकील, उनकी किडनी थोड़ी गड़बड़ कर रही थी, भाई की मृत्यु हुई, भाई की दोनों किडनी इनको लगा दी, अब वो सेट नहीं हुई, बिल्कुल ऐसी स्थिति हो गई, मृत्यु, कोई तरीका नहीं था बचने का। ये सब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस उन्होंने की और 3 मास में बिल्कुल ठीक हो गया, वो फिर से प्रैक्टिस में है, वो जीवित है, वो है बॉम्बे में, नितिन नाम है, एडवोकेट है हाई कोर्ट के, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिल्कुल जिसकी मृत्यु थी वो ठीक हो गए। कैंसर वालों को मैं बहुत एनर्जेटिक करा देता हूँ, बिल्कुल भूल जाओ कि मुझे कैंसर है, कोई भी आए कैंसर की चर्चा करना, सारा दिन कैंसर कॉन्शियस हो जाना, इसको भूलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा कैंसर आया है सो जाएगा, एनर्जेटिक कर दिया। कोई भी ऐसी वैसी बात करे का नहीं, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और पानी चार्ज करके पिलाया, ठीक हो गए लोग। कैंसर के पेशेंट्स को पानी चार्ज करके पिलाना परम आवश्यक है, क्योंकि आप जानते हैं कैंसर वापिस आता है, 5 साल में, किसी का 3 साल में, किसी का 10 साल में वापिस हो गया, अगर पानी चार्ज करके पीते रहेंगे तो कैंसर वापिस नहीं आएगा और जर्म्स मरते रहेंगे। तो ये कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज हम कराते हैं, हमें अपनी मन की शक्तियों को बहुत बढ़ाना है। मैं आप सभी को 1-2 प्रैक्टिस और बताना चाहूंगा, आप अवश्य वो करेंगे सवेरे उठकर, मैं आत्मा हूं, यहां रहती आत्मा, पॉइंट ऑफ एनर्जी, केवल ब्रेन से शरीर नहीं चल रहा, ब्रेन को भी जहां से कमांड जाते हैं वो है आत्मा, अंदर हाइपोथैलेमस के नीचे, तो मैं आत्मा हूं, ज्योति, इस पर थोड़ा कंसंट्रेट किया करें, मैं आत्मा पीसफुल हूं, प्योर हूं, बहुत शक्तिशाली हूं, मुझसे चारों ओर किरणें फैल रही हैं। हमारे यहाँ ये राजयोग सिखाया जाता है, सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस सिखाई जाती है, आप सब इसको किया करें। फिर परमात्मा से अपने को जोड़ना है और उसकी एनर्जी मुझे आ रही है, ये अभ्यास करेंगे। इज ऑल माइटी, सो उसकी माइट मुझे आ रही, जैसे एक फाउंटेन उतर रहा है मेरे ऊपर। ये प्रैक्टिस, इस संकल्प को आप रिपीट भी करते रहें, ये प्रैक्टिस करते रहें आप रोज अपने जीवन में, तो आप स्वयं भी बहुत हेल्दी रहेंगे, बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। आपका एनर्जेटिक और हेल्दी रहना परम आवश्यक है, क्योंकि आपको बड़े बड़े काम करने हैं। मैं सभी अपने डॉक्टर्स भाई बहनों को, जो बहुत सम्माननीय हैं, जिनका हम बहुत आदर करते हैं, बड़े प्यार से कहूंगा, अपनी हेल्थ का भी आप ध्यान रखेंगे, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखेंगे, और आपके संबंधों में कोई थोड़ी सी भी कड़वाहट हो उसको दूर करें। जब आप अपने हॉस्पिटल जा रहे हैं तो कड़वाहट लेकर न जाएं। हॉस्पिटल से घर आए हैं तो कोई डर लेकर न आए, मुस्कुराते हुए जाएं, मुस्कुराते हुए आए, सफलता का तिलक लगवा कर जाएं, सफलता का वरदान लेकर वापिस आए, सफल होकर वापिस लौटें। आप सबके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे देश में मेडिकल जो डिपार्टमेंट है बहुत श्रेष्ठ, बहुत सुंदर, बहुत ही सबके लिए लाभकारी है। बस मैं आपको ये कहूंगा, पुण्य भी कमाते रहें, दूसरों की दुआएं लेते चलें, सुख आप सबको बहुत देते हैं, सुख बांटते चलो, आपकी सुख देने की भावना संसार को सुखी करेगी। और रोज थोड़ा समय मेडिटेशन में अवश्य देना, ताकि आपका मन बहुत स्ट्रांग रहे, आपको लगे जैसे टाइगर का बच्चा टाइगर होता है, मैं ऑलमाइटी का बच्चा बहुत पावरफुल हूँ, कोई डर की बात नहीं, ऐसे संकल्प रखेंगे। मेरी शुभ भावनाएं हैं, आप सब हेल्दी रहें, वेल्दी भी रहें, बहुत सुखी रहें, सक्सेसफुल हों, बहुत एनर्जेटिक रहें। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।
ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज एवं मेडिकल विंग, राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन, RERF, आपके लिए लेकर आए हैं राजयोग मेडिटेशन कोर्स। आइए इस अंतर मन की यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। राजयोग मेडिटेशन कोर्स का आगामी सत्र सोमवार से गुरुवार, मंडे से थर्सडे शाम 7 बजे से 8 बजे तक मेडिकल विंग के फेसबुक पेज facebook.com/medicalwinghq/live व मेडिकल विंग के यूट्यूब चैनल youtube.com/bkmedicalwing/live। ध्यान रहे, इसका ऑनलाइन लाइव प्रसारण होगा। WhatsApp 8619937031।